सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी सुनो सुनो।
सभी बोलेंगे ओम शांति। हम सभी बाबा के सिकी लदे लाडले कहें स्नेही कहें बच्चे हैं। जैसे स्कूल में कोई इम्तिहान होता है, कोई पेपर होते हैं, तो कोई सवाल पूछते हैं ना, भाई पंडित जवाहरलाल जी कब जन्म लिया, डेथ कब हुई, भारत आजाद कैसे हुआ। तो ओम शांति जो हम लोग बोलते हैं, जिसको मालूम हो कहां से शुरू हुआ वो हाथ खड़ा करो। जो क्लास में जैसे दादी जी कोई क्लास कराते हैं तो वो कहते हैं ना सभी बोलो ओम शांति। पहले यज्ञ में ऐसा नहीं करते थे, ओम की धुनी लगती थी और मधुबन से ये शुरू हुआ। जिसको पता हो वो हाथ खड़ा करो। बोलो, ये भी मैं पूछ रहा हूँ। पहले क्लास में ऐसे पूछते नहीं थे, जहां बोलते नहीं थे सभी बोलो ओम शांति। क्यों जी ऐसा ही ऐसा है कि यज्ञ में बहुत बहुत बाबा के सिकिले दे स्नेही बच्चे, जो उनके मन में चीज अच्छी आती वो पक्की हो गई। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, उनकी बहू जो थी, एक तो निर्मल शांता बेटी है ना, परदादी माँ, और दूसरे बॉम्बे में वो रहते थे, उनका क्या नाम था याद है, ब्रिज इंदिरा दादी। उन्होंने ये शुरू किया था। वो जब भी कोई बैठता था ना, कोई अगर नाम भी बोले ना, कोई नया आता था तो कहते थे ओम शांति। तो वो एक दिन वो यहाँ क्लास छोटे हाल में करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सभी को बोलना चाहिए, और दादी माँ को भी बहुत अच्छा लगा। उस दिन का ये सभी, जैसे कभी आप अपने आदरणीय दादी जानकी जी हैं, वो देखो वो बहुत प्यार से एक छोड़ के दो बारी बुलाई। तो ये उस दिन की ये प्रथा ही एक यज्ञ की बन गई ओम शांति। और शुरू भी यहां से ही होता है और अंत भी यहां से ही है। तो आज हमें जो आदेश मिला बाबा का, कुछ समाचार अनुभव सुनाए, आप सभी बाबा के रतन हो, एक एक का बढ़िया से बढ़िया अनुभव है। और बाबा जो अनुभव हमें कराते ही हैं और हम लोग करते हैं, वो बाबा की देन है। ये तो अपने पास क्या था, वो गीत है ना, क्या थे हम बाबा, तुमने क्या बना दिया। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम शरीर का धर्मपाल भाई है। हम 1957 में 57 में ज्ञान में आए, और एक धार्मिक संपन्न परिवार में पैदा हुए। वो कैसे कि भक्ति भावना बहुत थी और उसका हमारे पास अच्छा प्रभाव रहता था। कोई भी जो बाबा कहते हैं ना, बाहर की वेस्ट चीज नहीं खानी, जहां वैसे भी इधर उधर, तो पहले से ये सब था। लेकिन जो हम ये सुनते थे तो हम कहते थे कि सत्य हम कब देखेंगे। मुझे याद है मैं चौथी श्रेणी में पढ़ता था तो कथा सुन के हम पिताजी हमारे सुनाते थे तो हम स्कूल में बाद में जाते थे और जब स्कूल से वापस आते थे तो नियम था कि जब तक मंदिर में नहीं गए घर में तब तक आप कुछ और कुछ कर नहीं सकते हो। तो वो नियम एक बना था और मुझे जो था वो साक्षात्कार ज्योति का होता था। जैसे वो गीता में सुना हुआ था ना कि अर्जुन को लाइट का साक्षात्कार हुआ। तो लेकिन उसकी जो डेफिनेशन या उसका जो विस्तार वो देने वाला कोई नहीं था। और ये भी सुनते थे कि जो बात हो ना वो किसी को सुना हो तो अच्छा नहीं होता है। तो हम जैसे मूंझते थे पिताजी से वहां से कभी बात करते थे तो वो कहते थे कि ये हमारा घर परिवार उस भगवान का है और वो हमें कराता है, लेकिन उसका विस्तार नहीं मिलता था। तो आस्ते आस्ते क्योंकि थोड़े टाइम में अनुभव तो जितना सुना पाएंगे उतना ही है, लेकिन मैं विशेष बात कुछ बाबा के साथ की सुनाऊंगा। तो हम सातवीं में पढ़ता था तो मुझे बहुत शौक होता था कि अच्छे अच्छे मुनियों साधुओं का संग करूं, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ूं। और हमारे घर में एक धर्मशाला थी यानी जिसमें एक में साधु संत महात्मा टॉप के आते रहते और उसमें सेवा करने का जो मौका था वो मुझे मिला हुआ था। शाम को सवेरे खाना खिलाना, ये करना, पूछना, एक एक से पूछना तुझे भगवान मिला है। तो ये भी इन्होंने जो बोला बहुत बढ़िया बात बोली, मैंने अपने फादर से पूछा था एक बार, आपने बाकी का नाम कुछ और रखा, मेरा नाम ये क्यों रखा, भगवान का नाम क्यों नहीं रखा, जैसे सीताराम राधे कृष्ण ऐसा ऐसा। तो कहते नहीं तेरे को धर्म की पालना करनी है। तो वो मैं ब्रेन में रखा हुआ था तो पूछता रहता था मैं। एक हमारे घर में सन्यासी आया, सन्यासी मैं उसको उस समय समझता था जो खूब दुनिया से न्यारा रहे। ऐसे मांगने वाले यहाँ ये जो साधु उनको हम सन्यासी नहीं समझते थे, सन्यासी माना जो धारणा के लोग थे। तो एक ने बताया तो पिताजी ने कुछ दिन पहले ही बताया कि धर्मपाल का मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, हमने कहा ऐसे तो घर वाले जाने नहीं देंगे। तो ये कहता मैंने भगवान को पा लिया, हम वीर के साथ चल पड़ते। तो लो जी हम हरिद्वार में चले गए, किसी को नहीं बताया उसके साथ। और वो यज्ञ हमन बहुत करता था, मुझे भी कहता था आप करो, पैसा वैसा तो हम लेके गए थे, कोई कमी नहीं थी। तो वहां यज्ञ करना ये मेरे को और ही तकलीफ होगी आंखों में, तो धुआं लगता था ना, वैसे तो कभी धुएं के पास बैठे नहीं, तो हमन में तो बहुत बैठना पड़ता है। तो लेकिन मुझे एक मेरे साथी साथ रहे, बाबा ही कहेंगे, उस समय पता नहीं था, लेकिन मुझे दर्शन ज्योति का रोज होता है। लेकिन वो उस जो सन्यासी था ना वो भी नहीं बताता था, हम पूछता था तो भी उसको नहीं पता था। तो वो राज आगे जाके खुलना होगा। तो 40 दिन वो किया, कुछ रिद्धियां सिद्धियां उससे मैंने सीखी। समझो क्या रिद्धि सिद्धि सीखी, किसी की गाय भैंस दूध नहीं देती है तो मैंने उसकी तरफ देखना शांत है, किसी घर में लड़ाई है झगड़ा है कोई भक्ति नहीं करता है तो उसको कुछ हमने बोलने का ठीक हो जाने, उसे भी बच्चे तो उसमें भी उत्साह मिलता था। लेकिन जो मेरे दिल के अंदर था ना मुझे मिले वो नहीं था। और मैं 2 मास रहा हुआ, कोई हमारे गांव के आए उनको पता लग गया, वो घर बताया, वो फिर मुझे ले गए। तो स्कूल में नामी जमात तक हम पढ़े, 10वीं में पेपर दिए, लेकिन आगे इच्छा नहीं होती थी हम पढ़े। भाई यही होता था, दुकान पे अगर हम बैठते थे जाकर के ग्राहकों से बातचीत करते थे, सब कुछ सोने का धंधा करते थे। तो बाबा के बारे में हमें इतना पता था कि लेखराज बाबू कोई है और वो बहुत वफादार, ईमानदार, दानी है। वो हमारे दादाजी उनको जानते थे, हमने नहीं देखा था। तो मन में आता था कि ऐसे लोगों के दर्शन करने चाहिए, होना चाहिए। तो ऐसे ही वो सन्यासी आते रहे और हम उन्हों का संग करते रहे। मंडलेश्वर आते रहे, शंकराचार्य भी हमारे घरों में आके रहते थे, कश्मीरी पंडित रहते थे। हम हर एक से पूछता था। एक बार फिर मेरा दिल नहीं हुआ, मैं इनके साथ निकल पड़ा। उसके बाद हमने स्कूल समझो छूट गया हमारा। 3 मास लक्ष्मण झूला, अगर कोई समझो हरिद्वार में गया होगा तो एक स्थान है बड़ी शांति का, वहां हम रहते थे, तपस्या करते थे। काली कमला, काली कमली वाले थे जो जे सब दवाओं का काम करते हैं, जैसे चमन फ्रास लेते हो वो वहां बनता है बहुत। इस ढंग से उन साधुओं का हम बहुत संग करते थे और आए लोगों को कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाते सुनते। तो मेरा दिल वहां एक दिन उदास हो गया कि साधु महात्माओं के अंदर कोई विशेष जो होना चाहिए वो नहीं है, और इन्होंने भगवान को पाया नहीं है। पाया होता तो अपने चेलों के साथ ये बिगड़ते क्यों है? तो उस समय हम ये जो गीता का जितना प्रचार होता है ना, ये उनके हाथ में है। मतलब जितने गीता मंदिर है, ये हमारा जो गुरु शिखर है ना, ये भी उनका है। तो एक दिन उन्होंने बहुत क्रोध किया चेलों के साथ। तो हमने उसको बोला कि हम तो गुरुजी जा रहे हैं। कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रात को यहाँ आग लग गई और हम आग बुझाने का साधन सीखने जा रहे हैं। मेरी बात समझा नहीं, लेकिन हम आ गए और हम थोड़े ही आगे गए तो हमें कुछ लोग मिले। वो पहचान वाले थे, कहते जी आप हमारे पास रहो। थोड़ा रहे और मुझे पहली बार, जो कि अभ्यास था 2 बजे उठना, 3 बजे योग अभ्यास करना, जो भी हम करते थे, तो मुझे सवेरे 3:30 का टाइम था ब्रह्मा बाबा। तो पीछे पता लगा इनका सामने मिलन हुआ मेरा। मैं बाकी आंखें बंद की हुई थी और अपने राम राम के अभ्यास में बैठा था, और मैं समझता था कि दुनिया का जो वैभव है ये थोड़ा ठीक नहीं है, सादा हमें जीवन बताना चाहिए। तो बोरी नहीं होती, ये जो हम चीनी विनी डालते हैं इसके ऊपर बैठ करके शाल ऊपर लेते बैठते थे। तो बाबा का जो लिबास था ना, वो कपड़ा पहना हुआ ये जैसे साधु पहनते हैं, और एक दाम दाढ़ी वाले, और कहने लगे बच्चे सामने जैसे खड़े, अभी आप घर चले जाओ। तो मैं देख रहा हूं तो वो सीन बदल गया। तो ये बाबा के ऐसे सामने, बच्चे जिस चीज को तुम ढूंढते हो ना, अभी तेरे को सब पता लगेगा। भगवान को बच्चों की जरूरत है, घर चले जाओ। तो आप सभी बैठे हो, समझते भी हो कि जिसके भाग्य में है वो तो जल्दी उस साइड लग जाता है, नहीं तो वो सोच रहा है कि मैं गुरु कैसे छोड़ूं, फलाना कैसे छोड़ूं। जैसे आता है ना मन में, बाबा हमें आगे बढ़ाने के लिए कितनी श्रेष्ठ बातें देते हैं, लेकिन हमारे संस्कार है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो हमने 2 बारी बाबा ने मुझे बोला और गायब वो सीन। तो मैं सोचा कि हाँ ठीक चले जाएंगे, लेकिन मन में आया इतनी देर जिसको ढूंढने हम आए, हमें वो पूरा पता तो लगा नहीं। तो घर वाले एक पूछेंगे भगवान को ढूंढ लिया तो क्या उत्तर देंगे उसका। फिर मन में पक्का किया कि अगर मुझे जाना ही है, कोई मुझे लेने आएगा तो मैं जाऊंगा। तो एक भाई, बहुत हमारे लौकिक भाई थे, बहुत प्यार करते थे, और वो वहां तक हर वस्तु हर वैभव पहुंचाते थे सेवा के लिए, और वो मैंने देखा कि वो मुझे लेने आ गए। देखो बाबा की कमाल, कहते अभी घर में रहो और जो चाहिए आप करो। अभी अपने गांव में हम पहुंचे ही हैं, बटाला की बात है, पंजाब में। तो दूसरे दिन जैसे आप देखते हो क्लास में तो सब कराते हैं, बाबा का अनुभव सुनाते हैं, श्रीज भाई जी हैं, कितने प्यार से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो तीन चार मेरे स्कूल के स्टूडेंट दोस्त थे, तो वो मुझे सब प्यार से स्वामी स्वामी जी बोलते थे, कहते हमें बहुत खुशी है आप आ गए हो, लेकिन एक बात सुनो हमारी, चार दिन हो गया हमारे पास, कुछ लोग आते हैं, दो बहने हैं दो भाई है, और वो योगी है सब, लेकिन हमारी मुझे से बाहर है, आप चलो देखो जाकर। तो हमारे को तो वो श्रद्धा थी, श्रद्धा ही उस समय बोलेंगे ना, तो हमने कहा हम जरूर चलेगा। तो एक दिन कारणवश मैं नहीं गया, क्योंकि बहुत लोग आ गए देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए, तो मैं गया वहां जानकी दादी, और एक दादी ने शरीर छोड़ दिया, वो थे, वो भी अमृतसर में उन दिनों में रहते थे। ये जो मैं ये बाद में देखे सारे, वो बॉम्बे में घर में रहती थी, फिर से ये छोड़ दिया उसने। तो लो जी, वो बहुत मुझे खुशी हुई, मैं फौरन वापस आ गया, मतलब मेरे मन में आया कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो पास में ही वो बाजार था, और वो जगह भी लौकिक हमारे अंकल जी थे उसकी थी, उसमें वो प्रोग्राम हो रहा था। मैंने दुकानदार को बोला कि एक केले का बड़ा टोकरा और एक पतासे का, ऐसे तीन चीजें प्रसाद देना चाहिए। फिर चलिए बाबा को, बाबा के पास। ऐसे ही दादी जान की दादी जी भाषण दे रहे थे, और साथ में बहन एक बैठी थी, वो दृष्टि दे रही थी। पहले यज्ञ की पुरानी प्रथा थी कि कोई एक भाषण करता है और दूसरा शांति का स्कोप सबको देता है। अगर एक कोई खांसी करता है, समझो, तो जैसे दूसरा बोलना चालू कर देता मदद के लिए, फिर उन्होंने बोलना। इस रूप में बड़ा रमणीक वो वातावरण होता था। तो जब मैंने दादी को वो जो प्रसाद लाए थे सामने रखवाया, कुछ भावना प्राणियां होती हैं, तो पैसा कुछ रखा, दादी ने बोला नहीं, लेकिन हमने रखा। और मुझे उसी समय ऐसे लगा कि सच्चा परिवार हमारा यही है, और जो वो ज्योति का साक्षात्कार शिव बाबा का होता था ना, वो जैसे उनके ऐसे ऐसे घूम रही है पीछे। तो अब फेथ में कुछ बाकी नहीं रह गया, जो कुछ है वो यहां से मुझे मिलेगा। जो मुझे कह रहे थे कि घर चले जाओ, ये वही समय है। लेकिन बटाला में उन दिनों में सेंटर नहीं होता, अमृतसर में होता। तो जब जाने लगे तो मैं दादी के नजदीक गया, दादी कहती हो सभी को बोला कि अभी हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे। मैंने दूसरे से जल्दी से पूछा, वो अंकल हमारा साथ खड़ा था, तो मैं कह ये कौन लोग है, कहां से आए? कहते अमृतसर इनका सेंटर है, देवियां हैं, देवियां ही बोलते थे सब, कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं बोलता। तो हमने दादी से डायरेक्ट बात की कि दादी आप क्यों जाते हो, हम तो अभी अभी आए और हम कुछ चाहते हैं। तो दादी ने कहा कि ये जो प्रसाद लाए हैं बांट दो सबको, दृष्टि देकर सबको, मतलब प्रसाद बांटने वाले बांट रहे थे। तो मैंने बातचीत चालू किया कि आप जाते क्यों, हम तो ज्ञान सीखना है, ये क्या चीज है। और मैंने फौरन जैसे उन्होंने से बात किया कि मुझे तो ऐसे साक्षात्कार हुआ, वो क्या है क्या मुझे कुछ पूरा पता नहीं है। तो दादी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसके लिए जो वो जगह अच्छी चाहिए जिसमें सेंटर हम लोग खोलते हैं। तो हमने फौरन उतर दिया कि भाई कितना बड़ा चाहिए, कैसे हमें बताओ, हम जगह लेंगे, जगह बहुत है हमारे पास। तो दादी ने बड़े प्यार से कहा हाँ करेंगे, अमृतसर रहते हम, फलानी जगह हमारा केंद्र है। मैंने कहा कि हम किससे सीखें। तो एक अभी भी आते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं वो, वैसे जो थानेदार थे, उन्होंने मेरा हाथ उसमें दे दिया कि आप इनके पास सीखना जाके। तो जो वो पूरे ज्ञान को सीखे हुए नहीं थे, प्रेम बहुत था उनको, लेकिन उसको बहुत रिगार्ड था। मैं जाऊं तो वो मुझे मिले ही नहीं, उसके घर में जहां भी उसका डेरा था, वो कहीं मार्डन, कहीं कुछ, कहीं केस, कोई ये कोई वो, उधर ही उधर। तो एक दिन हम कटिंग कराने के लिए गया, वो बाजू में नाई की दुकान थी, वो फिर आ गया, वो कहता किसी को सच्चा सौदा चाहिए, ऐसे आवाज से बोलता था, बहुत सीधा सीधा अच्छे ढंग से बोलना उसने। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं कहा कि मुझे आपको सौंप के गए थे वो माता जी, मेरे को तो ज्ञान सुनाया नहीं, औरों को आप सच्चा सौदा कह रहे। तो कहते नहीं नहीं अभी नहीं मैं जाना, कल मार्डन हो गया था, मेरे को उधर जाना पड़ा, परसों ऐसे हो गया था। हमने कहा ठीक है मैं सुबह आऊंगा 4 बजे। भाई हम गए तो उसने दीपक एक जगाया हुआ था, बहुत बड़ा दीपक, और लाइट उसकी ऐसे है, और उससे वो आंखें खोल के योग करता। देखो पहले का ज्ञान कैसा था, कोई शिव बाबा की इतने पिक्चर नहीं होते थे, कुछ नहीं था, कोई प्रदर्शनी नहीं थी। तो मेरे को कहता इधर बैठना और आंखें खोल के बैठना, वो भी सामने बैठ गया। तो उसका तो टाइम टेबल अपना, भाई उसने जाना ड्यूटी पे, ये वो 15 मिनट बैठे तो वो उठ गया, तो मैं तो बैठा हुआ। मेरे को इतना लगा कि मेरा सब कुछ जो है वो आएंगे, और उसी दीपक से वो मुझे ब्रह्मा बाबा का मूर्ति दिखती थी जैसे बैठे हुए, और मेरे दिल में था मुझे सुनाए ये। तो वो कहता है कि कल आना तो कल सुनाएगा। फिर मुझे आत्मा के बारे में थोड़ा सुनाया। हमने उनको बोला कि आप अमृतसर में जाते हो, कहता कभी वो बुलाते हैं जहां कोई प्रोग्राम होता है, जहां कभी मुरली आदि कोई लेने जाते हैं तो मैं जाता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं शनिवार जाता हूँ वहां, शनिवार हम 9 बजे जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, अगर आप मेरे साथ चलो तो बहुत अच्छा। हम किस लिए जाते थे कि सोना जो व्यापार था ना पाकिस्तान का भी, इधर का भी, उधर का, सब अमृतसर में होता था, और वहां से थोक लेकर के आते थे और फुटकल उसको वहां भेजते थे। तो वो कहता क्या मैं चलूंगा। हमने कहा कि पहले सेंटर में जाएंगे और बाद में फिर आप 2 घंटे मेरे साथ चलना, फिर वापस आ जाएंगे। भाव जी दादी जी को मिले, बातचीत हुई। जवाहर दादी जो थी ना उन दिनों में, वो भी वहीं थे, और वो उनको अपनी जो असली मलकियत, मतलब उनका जो भवन जायदाद थी पाकिस्तान में, वो उसके एवजे में उनको अमृतसर की जगह मिली हुई थी। बाद में पता लगा मुझे, मतलब हमारा ये नकी हो गया दादी के साथ कि हम जगह देखेंगे और वहां सेंटर खोलेंगे। हमने कहा ठीक, हमने कहा जगह चाहिए कितनी मुझे ये बता दो आप, कहते कम से कम 4-5 कमरे चाहिए। तो उस समय हमारे समझो परिवार जो था उसमें एक बरात घर था जिसमें शादियां वादियां होती हैं, तो हमने कहा कि सबसे बढ़िया तो बात ये है, शादियों में तो झंझट है और यही प्रोग्राम चलना चाहिए। आगे हमने अपने काका को बड़े प्यार से बोला कि ऐसे करके बात है। तो वो धार्मिक तो बहुत था, दानी बहुत था, लेकिन उसको ये आश्रम क्या क्या गया उसको भी पूरा पता नहीं, और हमें भी अभी इतना पता नहीं था। उसने हाँ कर दी 4 साल के लिए, हम जगह भी देगा, भोजन की व्यवस्था भी देगा, सब ध्यान रखेगा। नीचे हॉस्पिटल था, ऊपर रहते थे, लो जी वो उन्होंने उधर से हफ्ते के बाद सब तैयारी करके, एक और भाई था जनक भाई, आज वो नहीं है, लो जी वो त्रिमूर्ति घाट निकला हुआ था, इधर तो नहीं था लेकिन अमृतसर में था, तो उन्होंने लगाया हुआ, ऐसा नहीं होता त्रिमूर्ति घाट जैसे देखते हो, पहले और ढंग का था, ब्रह्मा बाबा की मूर्ति भी बड़ा और ढंग की, शंकर और ढंग के। तो जब मैंने गौर से वो ब्रह्मा बाबा की मूर्ति को देखा ना, तो मुझे याद आ गया चित्र देख के वो हरिद्वार की, तो वही है और सीखना चाहिए अच्छी तरह। तो लो जी वहां रतन मणि दादी, आपने शायद देखे नहीं, रतन मणि जो ऊटी में रहते थे, और शिशोदा मैया बाबा की बहू नहीं, दूसरी शिशोदा थी एक, उनकी बहन कमल मणि दादी, ये सब सात बहने हैं। तो वो दादी को वहां भेजा, हमें कुछ सुनाते थे लेकिन हमारा मन में ये आता था कि इतनी ऊंची बात मिल गई हमें, हमें ये जल्दी सीखनी चाहिए। तो हम रात को वो जैसे वो SHO वो नहीं दीपक जगाता था, हम भी घर में दीपक जगाते थे, जाकर के अकेला में रहता था, चार पांच कमरे का रूम था वो, उसमें बैठते हम तो फुल रात समझो बैठना। तो ये कोर्स जो समझो मुझे बाबा ने सिखाया, एकदम सामने आ जाते और जैसे चित्र लग जाते, ज्ञान की पूरी मुझे पहचान दी। मधुबन मेरे को दिखाया, उन दिनों में पांडव भवन ताजा ताजा लिया था, और ये जो आप जहां पहरेदार बैठते हैं अंदर देखते हो, डिस्पेंसरी अभी होती थी, तो वो रिकॉर्ड लगाते सब, मतलब मुझे वहां ही ब्रह्मा बाबा ने ये अच्छी तरह दिखाया। और मेरे दिल में इतनी उमंग, मैं जाना जरूर जाना। तो हम ढाई मास के स्टूडेंट थे उन दिनों में, अचल बहन जी भी अपने गांव के हैं, तो हमने कहा कि हमको चंद्रमणि दादी थी उन दिनों में, फिर आ गए साथ ही, कहते फिर चलेंगे, मैं कह जी मैं रह नहीं सकता, जरूर जाना है, चाहे मुझे आप कैसे भी ले चलो। और बाबा को हमने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, और बाबा की ये कमाल देखी कि पत्र बाबा को जो भी लिखता उसका बाबा उत्तर फौरन 4-6 दिन के बाद मिल जाता। हमने कहा हाँ बाबा का भी चिट्ठी आ गई, लो जी हम आए इधर। उस समय अचल बहन हम और ये रतन चंद्रमणि दादी और 40 लोग थे हम आए। उन दिनों में यहाँ कोई ये मकान नहीं होते थे, सिर्फ अंदर का ही होता था, और टेंट लगते थे और कभी कभी इधर उधर जगह ले लेते थे। तो ये दर्शन भवन ये शायद 5 रुपए मास का, हम ये जो नौकरी चक्कर काम करते हैं इनको ही देते थे ये लोग, और वो कुछ दिनों के लिए दे देते थे। तो वहां हम रहे, तो हमें डायरेक्शन था कि अच्छी तरह स्नान करो, लंबे सफर से आए हो, और रास्ते में ये पक्का हमें किया था कि अगर बाबा तुम्हारे से पूछे कि कब मिले थे तो 5000 वर्ष पहले, समझते बात, कहीं कमजोर जगह सुनी बनना है। इस ढंग से बड़ा पक्का करके फ्रेश हो करके बाबा को मिलना, तो आते ही कहने लगे कि भाई पहले तैयारी करो और फिर नाश्ता करो, फिर बाबा को मिलना है। तो अब ज्ञान तो पूरा बुद्धि संपूर्ण बैठ चुका था कि बाबा ही जाकर के कृष्ण बनेंगे। तो हमने कहा कि लगन ये थी कि हम जैसे खाए नहीं कुछ तो बाबा को मिले स्नान करे, वो मन में उमंग था, ये सोच थी। हम स्नान कर रहे थे तो मैं क्या सुनाऊंगा कि ये जो पहला ही रूम जाते हैं ना, इसमें टर्न बाई टर्न स्नान कर रहे थे, 2 बाथरूम होते थे। लो जी मैंने बाबा को दूर से देखा, क्योंकि ये जो है ना दीवार हमारी ये अब लंबी बन चुकी है, पहले छोटी छोटी दीवार होती थी इतनी इतनी, एक रूम से निकलते थे ना जब गेट से तो पता लग जाता था, साथ में लच्छू दादी जैसे कोई छोटी सी सखी स्वर्ग का सीन देखते हैं ना। और बाबा ताज वाज लगाया हुआ, बाबा देखो हर बच्चे की उमंग कैसी पूरी करते हैं। और मैं अंदर था, बाथरूम में स्नान कर रहा था, कर चुका था, कपड़े पहन रहा था, लो जी मुझे कमीज भी डालना भूल गए। मैं जल्दी से आया और बाबा वो दर्शन भवन के आगे आगे एकदम, मुझे किसी ने बताया नहीं बाबा को कैसे मिलना क्या, भाई जी बाबा ऐसे और हम बाबा जल्दी से वो एक आप देखना ये मुर्गे के पंख होते हैं ना, क्या नाम लेते हैं जाड़ का, अभी भी वो यादगार है वहां, तो वो वहां था और ऐसे थल्ला बना था, बाबा वहीं बैठ गए भैया हम गोद में, लेकिन मुझे कोई पता नहीं मैं कहां। बाबा बहुत कहते हैं प्यार दिया और मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। और कहते हैं कि अचल बहन और चंद्रमणि दादी खींच रहे हैं मेरे को, लेकिन हम बाबा की याद में मस्त हैं। बाबा ने फिर कहते हैं कि आस्ते आस्ते मैं आया तो बाबा बाबा, तो बाबा के मुख से निकला बच्चे वो दिन है आज दिन है, वो सीन सदा याद रहता है। और मैंने कहा बाबा मैं कहा हूं, बाबा कहने के बच्चे ये तुम्हारा ही घर है, मतलब मेरा पूछने का मतलब था कि यही पांडव भवन, तो उस समय हमारा तो था ही कुछ नहीं, मतलब वो जगह हमारी नहीं थी, तो वो बाद में देखो बन गया। तो इस रूप में मेरा दिल फिर ऐसा होता था कि मैं यहां से जाऊं ही नहीं, लेकिन अचल बहन जी कहने लगे कि इसका बहुत बंधन का रूप समझो, घर में बड़ा पाठ है, और नहीं तो वो फट कहेंगे लिखेंगे कुछ बोलेंगे, इनकी सिस्टर की शादी है तो जाने का है। तो उन दिनों में 15 दिन हम रहते थे, एक मास भी रहते थे पहले पहले, लो जी मुझे साथ ले गए, हम बाबा को जातिवार गोद में बैठे, बाबा को बोला बाबा मैं 3 मास के अंदर अंदर आएगा, हाँ हाँ ठीक है, लो जी गांव गए, जो भी था किया काम शाम, लेकिन लोगों ने हमारे पिताजी का दिमाग खराब किया खूब कि रहेगा नहीं फिर भाग जाएगा, तो बंधन का रूप एक जैसे तैयार हो गया। तो मैं देखता था कि जो भी हम वाणी सुनते थे शिव बाबा की, तो हम जाकर के अपनी माँ को सुनाते थे, तो माँ तो बहुत प्यार से सुनती थी, मम्मा की वाणी खास करके पिताजी सुनते थे, लेकिन बाबा की वाणी नहीं सुनते थे, क्योंकि बाबा तो सागर थे, वो अभी भी उन्होंने कहना परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मुरली सुनते हो वो तो अथाह है, ये है ये सन्यासी कैसे हैं, कभी कभी वाणी में तुर्श शब्द भी आते और वो बिगड़ते थे, तो फिर भी उनको प्यार था। हम तो 2.5 मास हुए फिर मधुबन आ गए, हाँ जी 3 मास भी पूरे नहीं हुए, तो फिर तो घर के 1.5-2 साल चले नहीं, हम इधर ही रह गए, गए ही नहीं। फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे सेवा करनी है, बाबा का सेवा के प्रति बहुत प्यार था। उन समय 6 सेंटर थे सिर्फ, लखनऊ में था, कानपुर में था, इलाहाबाद में था, अमृतसर में था, श्री अरविंद पर, ये सेंटर होते थे। तो बाबा इधर हम रहते थे, रात को मातेश्वरी क्लास करवाते, पूछते कि पहली बात आज भूल किसने की है, समझो हम आपस में भाई बहन है, कभी कभी मूड ऑफ हो गया किसी की, इन्होंने हमें कुछ आदेश दिया हमने वो माना नहीं तो वो भूल है ना, तो मम्मा पूछती थी, फिर सल्वेशन पूछती थी कि किसी को कुछ चाहिए तो बोलो, और बाबा की मुरली चलती थी कि यहाँ क्या रहना, क्योंकि उस समय 40 लोग थे यहाँ, 3-4 हम लोग थे और पुरानियां बूढ़ी माताएं बुजुर्ग जो कराची से आई थी, बाकी तो सेवा के लिए इधर उधर निकले हुए थे। तो कई बार मन में आता था कि हम जा करके सेवा करें, वाकई बाबा ठीक कह रहे हैं। तो इधर भी हम सन्यासियों को ले आना कभी किधर कभी किधर, हमारी उन दिनों में ड्यूटी थी कि जो भी पार्टी आती थी उसको हम जंगल में घुमाते थे, तपस्या करवानी दिखाना, जहां ये अचल गाड़ी ये वो सब पैदल जाते थे, उस समय अपनी भी कोई गाड़ी नहीं थी, एक बैलगाड़ी होती थी उसमें सामान लेकर के आते थे, और ये रास्ता था। और जब गेट के बाहर जो गेट आप देखते हो ना झाड़ था, वहां तक बाबा भेजने जाते थे सभी को, जब तक वो ऊपर रोड पे नहीं पहुंचा, और कोई भी बच्चा आज भी देखो बाबा के बच्चे जब भी जाते हैं इच्छा थोड़ी होती है, लेकिन सब रो रो करके बाबा बैठ करके उनके ये पानी साफ करते थे। बच्चे तुम जा थोड़ी रहे हो, आप तो आने के लिए जा रहे हो, आए थे बादल भरने के लिए आए थे, और बाबा इतने प्रेम से भेजते। फिर एक बारी मैं मम्मा को कहा कि मम्मा जी हमारी इच्छा है कि हम सेंटर खोलें, जाएं, लेकिन बाबा मम्मा तो अपने बच्चों को जानते हैं ना, शिव बाबा तो जानते हैं ना, तो छोटा हाल ये बन चुका था। उस समय यहाँ हमारी ड्यूटी यही होती थी कि हम रविदत्त भाई और हम मिल करके वो सब कैसे बनाना, और हम बाकी का काम सब करते थे। उस समय मेरा ख्याल है 8 आने मजदूर की मजदूरी होती थी, बहुत कम पैसे पे। तो ऐसे बाबा कहते थे बच्चे वहां जाओगे जाके करोगे क्या, भाषण करना सीखो पहले। तो जैसे ये चादर बिछी है ना, तो उसमें एक छोटे छोटे बच्चे होते थे, उस चादर के ऊपर ठप्पा लगा होता था, तो बाबा में वहां बैठा देते थे, बच्चे बोलो, लेक्चर करो, ये सब लोग बैठे हुए हैं। तो क्या बाबा का वो प्यार जो आज भी बाबा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो लो जी हम फिर बाबा को सुनाते थे, दिन को कभी बैठना तो बाबा से रूहान करनी। एक बारी ऐसा भी समय आया, बाबा बम्बई में गए हुए थे, मम्मा थी अकेली, कुछ पुलिस आ गई दिल्ली से, किसी ने रिपोर्ट किया कि इनके पास नोटों की मशीन है, नोट छपता है यहाँ, और ये कहानियां सुनते रहते हो ना कन्या माता है, शुरू शुरू में बहुत इन पे वो आया। तो कमलानगर में सेंटर था उन दिनों में, तो एक कृष्णा बहन थी, आज भी उसका परिवार चलता है, ये जो बिमला बहन ये वो इनके परिवार में है वो। तो वो उसका रिपोर्ट किया कि मेरी बहन अभी 18 साल की नहीं है और वो यहाँ आ गई और भगा के ले आए। तो हम उनको सारा घुमा करके पार्टी समझो 10 की आई 20 की आई 5 की आई, तो जब ड्यूटी है तो ड्यूटी है ना, तो वापस लेकर के आए। मैंने उसको बोला, उसका नाम कृष्णा था, मैं कहा कि कृष्णा बहन स्कूल की स्टूडेंट थी हो, तो ध्यान से देखो ये हमने पैर ना अंदर पड़ गए। लो जी उसने उसके अंदर पैर चला गया और वो थोड़ी पैर जल गया उसका। तो यहाँ डॉक्टर बना हमारे उस समय कौन थे, रविदत्त भाई। तो ये दादी का जो रूम है ना ये बाबा के लिए बना था, लेकिन बाबा वहां नहीं गए, और उस समय वो प्लस्तर व्लस्तर हो रहा था, वहां वो इलाज वाज करते थे। तो उसमें कम से कम 30 वो स्टाफ था, वो आया आगे आगे एसपी था यहाँ का। और बाबा की उस दिन मुरली हमने सुनी कि दूसरे की सेवा जो महान है, जो भोजन करते हो ना बेटा उसी समय साइड रख दो, उसको समझो खुला कर दो और उनकी सेवा करो। और जिसकी ड्यूटी थी ना उस समय, थोड़े थे ना लोग, वो ये बैल नहीं बजता था, वो घंटी जैसे नहीं ऐसे बजाने वाली होती है, वो थी, वो उसको लगाते थे और पता लगता था कोई आया बाहर। लो जी मैं क्या वो सीन देख के, तो बाबा की सूर्यवाणी सुनी, वो तो पता नहीं कहां से हम पहुंच गए। अब देखो किस प्रकार बाबा सेवा का निमित्त बनाते हैं। तो मैं वहां गया, बात पूछी, कहते ऐसे कुछ हम यहाँ हमें रिपोर्ट मिली है, हम यहाँ तलाशी लेना चाहते हैं। और मेरे को फट याद आया कि एक बार लौकिक घर में हमारी चोरी हुई थी और वो किसी ने पैसा देकर के गड़बड़ किया था, समझे हमारी बात, सोना उठा के ले गए। तो हमने कहा कि ये तो पुलिस भी कर सकती है, कोई दूसरा भी कर सकता है। तो जैसे बाबा ने अंदर बल दे दिया, हमने कहा जी ऐसे नहीं, पहले बताना होता है, टेलीफोन हमारा नंबर है, आप हमारी माँ बाप को पहले रिपोर्ट करते, तो ये तो पहले तलाशी आपकी लेनी चाहिए। मतलब इतना दिल के अंदर पावर, ये जैसे बाबा मेरे साथी है और बाबा मेरे से काम ले रहा है। तो जब ये गेट के सामने आए तो मम्मा अंदर थी, मैं कह इधर रुक जाइए मैं अपनी माँ को जाके बताता हूँ। लो जी मैं कहा, तो मम्मा ने कहा कि इनका ध्यान रखना है, ये पुलिस होती है और ये कुछ जो करे एक्शन बताना मुझे। लो जी उन्होंने पहले दादी के ऑफिस में गए। बात बड़ी लंबी हो जाती है, माना वो मिला क्या, कुछ नहीं मिलना था, सीधी कागज मिले उन्होंने अपने अंडर कर लिए, ये कोई हो सकता दस्ता ऐसा हो। फिर उन्होंने सारा देखा तो मम्मा इस रूम में रहती थी जहां ऑफिस के बाजू में, तो कहते अपनी मां को मिला दो जरा, ये रूम रहता है तलाशी करने वाला। मैं क्या आइए लो जी, उस समय ड्रामा की कमाल और मम्मा की कमाल, इतनी छवि मम्मा की सुंदर, जो विश्व में मैंने आज तक ज्ञान की बात अलग है वैसे नहीं देखी, जिसको नूरी मुखड़ा कहते हैं, यहां तक मम्मा के बाहर। लो जी ओ, हमने कहा कि मम्मा को पूछा, मम्मा ने कहा ले आओ, कोई अर्जा नहीं, इशारा दिया, ओ मम्मा को देख के ही उसको पता नहीं क्या हो गया और वो गिर गया। ये यहाँ वो दादी रहते थी ना अपनी मम्मा की ब्राह्मणी, तो इधर से गेट था मम्मा के कमरे को जाने का, तो लो जी उसको मैंने उठाया जल्दी से, थोड़ी चोट लगी उसको, तो उसने नमस्कार किया। फिर मम्मा ने कहा हाँ बच्चे आए हो, देखो। देखा उधर मिलना क्या था, मम्मा ने कहा बिठाओ कोई प्रसाद प्रसूस खिलाओ। तो उस समय दिन के 12 बजे हुए थे, भोग लगता था, हम भोजन समझो वहां मिलता था, कोई इधर बैठा कोई इधर बैठा मजे से खा रहे थे। उस दिन कोफ्ता बना हुआ था, तो वो कहता है कि ये भोजन में खुशबू बड़ी आ रही, और हमारे को स्वभाव ऐसे कि भाई कुछ टोली नहीं तो चलो ये दे दो, उसको एक उठा के उसके मुख में डाल दिया हमने कोफ्ता। वो कहता वाकई ये तो स्वर्ग की चीज है। उसको कुछ आया जब वो तो बैठे हुए थे, तो उन दिनों में क्या था कि सुरमा साहब पहनते थे काजल, हम भी पहनते थे, तो वो कहता है कि इसी में जादू है सारा, तो ये कहां से मिलता है। तो जमुना दादी सामने से आई, मैं कहा दादी ये चाहते हैं एक, इनको भी शीशी दे दो। तो मम्मा को मिलने के लिए बैठे थे, वो कहता मम्मा से मैं बात करनी है। तो उन दिनों में ये जो निर्वैर भाई जी का ऑफिस है ना, ये बना था सिर्फ, और वहां उनको बिठाया हुआ था, मम्मा प्रश्न उत्तर किए, और वो वाकई उसको वो शीशी भी एक दी लगाने वाला काजल, भाई मांगा तो देना चाहिए ना। मम्मा ने उनको बहुत प्यार किया। फिर वो कहने लगे कि भाई सच्ची बात बताओ कैसे आए हो। फिर वो कृष्णा बहन की बात निकली और नोटों की मशीन की निकली, क्योंकि जब भी पहली तरीक आती थी तो पहले ये रिवाज था कोई मनी ऑर्डर आते थे और कुछ लेटर के अंदर ही पैसा रखा होता था, तो हर एक चाहता है कि मैं बाबा को भेज रहा हूँ नया नोट भेजू, तो वो समझते थे कि शायद नोटों की मशीन है, मतलब मिला कुछ नहीं। तो बस उसको अच्छा बहुत लगा। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आओ मैं वो तुम्हारे को बहन वो लड़की दिखाऊं, और उसकी दो बहनें साथ आई हुई थी। लो जी उधर कमरे में ले गए। अब जो बाबा कहते ना मैं प्रवेश करके भी बात करता हूँ, वो बात समझने की बाबा की थी, उस समय का ये माहौल रहता था। और पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने इतना बढ़िया उसको ज्ञान सुनाया, कहते वो भाई मारा ऐसा ही है, योगी रोबोट। देखो मेरी साल उम्र तो 19-19.5 साल की है, और मैं तो अपने पिताश्री को मिलने आई हूँ। अरे हम इतनी दूर से आए हैं, तुम्हारे को भगवान पढ़ा था, तुम्हारे को पता ही नहीं है कुछ, ऑफिसर बन गए तुम। तो उसने इतना प्यार से समझ से, जैसे कोई मान टीचर, और मैं समझता हूँ कि उस समय बाबा उनको जैसे आदेश सीधा दे रहा है। उस एसपी ने जब तक मैं देखता रहा, बदली नहीं होती रही, बहुत सहयोग देता रहा, लोगों को सच्ची बात सुनाता रहा। और बाबा खास कभी कभी टोली बना करके उनको भेजते, तो इस रूप में फिर सेवा के लिए हम बाबा को बहुत कहते थे कि सेवा के लिए भेजो हमें। तो मम्मा ने छुट्टी दी, बाबा ने छुट्टी दी, और उस समय कुछ बेकरी लाइफ भी चल रही थी, लास्ट उसकी स्टेज थी वो। तो मुझे याद है 16 रुपए हमें मिले थे और टिकट अमृतसर की मिली थी, और बाबा का एक हमें जिसको भक्ति मार्ग में आशीर्वाद कहते हैं और ज्ञान में क्या कहते हैं, कमाल बाबा की। और वहां हम गए, साधन बनते गए, इतनी सेवा इतनी सेवा, बस फिर विस्तार सेंटर के होते रहे, इतनी सेवा होती रही। और यज्ञ में हमने पहले पहले कुछ भोली दादी के साथ भी सेवा किया, लेकिन ये सेवा हमें 20 दिन 25 दिन इतनी मिलती रही। आज सफाई की ड्यूटी है, कल को आटा बनाने की है, रोटी बनाने की है, मुझे तो आती नहीं थी, ये मम्मा ने मुझे भोजन बनाना सिखाया, टोली बनाना सिखाई। आतम भाई के पहले हम टोली बनाते थे, फिर तो बाबा के कितने रत्न आ गए, वो मधुबन का कितना विस्तार। तो ऐसे करके मेरा कहने का भाव ये कि जिसको कहते हैं ना बाबा 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 वाह 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 वाह, जिसको कहते हैं ओके, एवरीथिंग ओके और ऑलवेज ओके, सदा ही खुशियां। और बाबा ने जो कहा, जो बाबा के मन में होता था ना कि बच्चे यहां ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। आज तक मैंने कोई नई बिल्डिंग, जैसे आप बाबा के बच्चों का आना, वो पहले से ही बाबा को याद करते थे। कैसे याद करते थे, जैसे समझो माताओं के 2-4 बच्चे हैं, माता अपने बच्चे का नाम जब लेगी ना, वो जिसको बुलाती है उसका नहीं लेगी, दूसरे का लेगी, और फिर दूसरे का ले लेगी, फिर तीसरे का ले लेगी, फिर चौथे का ले लेगी। समझे मेरी बात, खुशी में। और बाबा पहले से ही बच्चों को ऐसे याद करते थे, और बच्चे मेरे बहुत आने वाले हैं। लेकिन बाबा साथ साथ ये बात चलती थी, 76 में विनाश होना, 76 में हमारे को तो पक्का निश्चय था विनाश होना। तो उन दिनों में हम सर्विस सेंटर पे रहते थे, पार्टी वार्टी लेके आते थे, तो बाबा तो व्यक्त हो गए बाद में। तो अब हम समझते थे कपड़ा भी क्या करना है, क्या सिलाई कराना है। तो दादी जी को पता लग गया, एक बार हमें कलकत्ते में सेवा के लिए भेज रहे थे, तो उन्होंने कहा, दादी ने बोला कि कपड़ा वपड़ा है तेरे पास? हमने कहा कि 2 जोड़े मेरे पास है, एक मैंने पहना हुआ है, और वो भी थोड़ा ऐसा ही था, पीस लगे हुए। तो हमने कहा कि 76 में विनाश हो जाना। तो दादी ने मुझे इतने नीचे से फेस मेरा पक्का किया कि आपके कपड़े का विनाश होगा, सारी दुनिया का होगा, यज्ञ का होगा, ये इतने जो बन रहा है इसका होगा, तो सेवा के लिए दादी आपको भेज रहे हैं ना। तो लो जी, यहां तक फेस की बात दादी ने पक्का करवाते थे, बाबा पक्की करवाते थे। फिर बाबा ने जब पुराने शरीर को अव्यक्त किया, तो 2 दिन मैं पहले मिलके गया था, तो हमारे पास कोई चीज होती थी तो दूसरी चीज लेना ही नहीं है, क्योंकि बेगरी लाइफ का वो नजारा सामने रहता था ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो बाबा आज तेरे को दे वो तुम लेके जाओ। उस दिनों में हमने बटाला तो खुला हुआ था सेंटर, जलंधर और गुरदासपुर का शुरू किया था। तो 2 दिन के बाद बाबा की ये खबर आ गई, फिर हम इधर पहुंचा, क्योंकि हम गीत एक गाते थे कि ब्रह्मा के तन से अंदाजा लगाओ तुम अब दिन बाकी कितने हैं, अब ये गाड़ी चलने वाली है, अब नहीं रुकने वाली है, खोजो सवार, क्योंकि गाड़ी की अभी सीटी बजने वाली है। अभी तो बड़े बड़े सुंदर गीत हमारे सुनाते हैं, मिलते हैं सुनने को, पहले कवि ऐसे ही होते थे। तो इस रूप में यानी बहुत जगह बाबा ने सेवा का मौका दिया। फिर 1972 में हमें मेले की सेवा मिली, 2 तक वो की, और उसमें बहुत बाबा के बच्चे निकले जो बाबा कहते थे और आज निकल रहे हैं। इसलिए हमारे दिल में उमंग को कोई कमजोर ना कर सके, हम संग करें तो स्टैंडर्ड का संग करें, कमजोर को हम ज्ञान की बातों से आगे बढ़ा दें नीचे से। ये बाबा हमें सिखाया, सीखना है और आगे सदा बढ़ते जाना है। और लकी जिनको बाबा की सेवा का डायरेक्ट मधुगम बन का मौका मिलता है, आप कितने लकी, सब परिवार हो। बाबा कहते हैं सेवा का मौका लकी है, और फिर जो समर्पण लाइफ अपनी को देते हैं। मुझे याद है, एक मिनट के लिए मैं सुनाऊंगा, फिर पूरा करते हैं, फिर कभी सुनाएंगे। बहुत बाबा की बातें हैं। बाबा हर को प्यार करते थे, जैसे ये शिलू बहन हमारे देखते हो, सुदेश बहन है, ऐसे 6-8 बहनें दिल्ली की होती थी, कोई बॉम्बे की थी। तो बाबा की क्लास चल रही थी यहाँ, बाबा उनको बड़े प्यार से, तो कुछ कुमार थे नटशेल में, तो वो कहने लगे मुझे कि बाबा कन्याओं की क्लास कराते हैं, कुमारों की नहीं कराते हैं। मैं कहती बाबा का तो सबसे प्रेम है। कहते हमारी क्लास होगी, होगी। लेकिन उन दिनों में क्या होता था कि जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो बाबा से भी सीधा प्यार होता था, फट बाबा के पास जाके बोल देने का। तो बाबा के कान में मैंने बोला कि ये कुमारों ने ऐसे बोला है, तो बाबा तो बहुत ही खुश होते थे। बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ ठीक है, कल से उनकी करवाएंगे। फिर माता बहने कुछ बैठी थी, कुछ भाई बैठे थे, मतलब उन्होंने भी बोला, हमने बाबा को बोल दिया। वो बीच में जैसे कोई दलाल वलाल का चक्कर नहीं होता था कि किसको पूछना है, ये करना है, वो करना, सीधा जैसे मम्मी डैडी के पास तो सीधा जाना होता था। तो इसी प्रकार ही बाबा ने सबकी क्लासें कराई, और बाबा ने बहुत अच्छी तरह ये उनको आगे बढ़ाते थे कि बच्चे जो कुमारियां होती है ना, 100 कुमारियों से एक ब्रह्म कुमारी श्रेष्ठ होती है, जो विश्व के कल्याण के निमित्त बन जाती है। ये कुमार बाबा के पास बैठते तो बाबा पूछते 100 कुमारियां, एक ब्रह्मा कुमारी, और 100 ब्रह्मा कुमारी और एक विश्व परिवर्तक करने वाला, जिसको वो क्या बोलते हैं पांडवों में बड़ा कौन था दादा, नहीं भीष्म भी क्या, बूढ़े बुजुर्ग जो थे नाम क्या था, भीष्म पितामह। तो बाबा ने कहा कि वो विश्व के कल्याण के निमित्त बन जाता है, और 100 अगर कुमार है तो एक अदर कुमार, क्योंकि बच्चे और बच्चियां जो अपनी अच्छी साइड लगा देते हैं। और बाबा कहते थे जो माताएं हैं जिनके बंधन मुक्त हैं वो मेरी सबसे अच्छी माताएं हैं, क्यों कि वो सेंटरों में जाकर के बहन सेवा करती हैं, वो उनकी देख देख करती हैं, वो उनको आगे बढ़ाती। तो बाबा का हर शब्दों में प्रेम समाया रहता। आज भी हम कभी बैठते हैं मुरली सुनते हैं तो हमें ये नहीं है कि ये फलाना कोई मुरली सुना रहा है, बस ये मन में आता है कि बाबा सामने बैठे हैं, वो एक्शन याद आ जाती है, मजा आता है। ओम शांति।